الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، صلوات علی محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کے اس سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات نعت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک سلام دے دیجیے گا۔ مضمون کو جیسا کل آپ سے وعدہ کیا تھا آگے بڑھائیں گے، لیکن دو منٹ اچھی خبر بھی تو دے دینی چاہیے نا آپ، اچھی خبر جس کو سن کے تھوڑا انسان مومن کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چار پانچ دن سے ہم نے بھی اس طرح اشارے کیے، کئی جگہ کلپ چل رہی ہے، پانچ چھ دن ہو گئے نا کلپ چل رہی ہے، جس سے مومنین بہت بے چین بھی ہیں، پریشان بھی ہیں۔ اور پریشانی کی بات یہ کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، کہاں سے سنبھالے آدمی، کیسے سنبھالے گا، کس کس طرف سنبھالے، کہاں کہاں دیکھے، کیا کیا ہو رہا ہے، جس کی جو مرضی کیے چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج کیونکہ سارا دن ہم بھی پیچھے لگے رہے، اس کے ہمارے رفقا بھی پیچھے لگے رہے، اور بھی لوگ بہت سارے پاکستان میں پیچھا کرتے رہے اس چیز کا، تو یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ فیک ہے، یہ ایڈٹ کی گئی ہے، اور کچھ لوگ اس میں پکڑے بھی گئے جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، ہوا ضرور ہے کچھ، لیکن وہ نہیں ہوا ہے جو دکھایا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ایسا نہیں ہوا، ہوا ضرور ہے، ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جبھی تو بنایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ ایک خاص اینگل سے تصویر لے کر سب کر کے جو فنکاری ہوتی ہے، ظاہر آپ جانتے ہیں کیمرہ مین اور یہ سب جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ہماری ہمارا ایسی تیسی کر دیتے ہیں، ایک گھنٹے کی تقریب سے ایک ایک لفظ ایڈٹ کر کر کے ایسا نکالتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں۔ ہوں تو میں کیبی میں رہا ہوں، لیکن میں نے کب کا مجلس میں دیکھا ہی نہیں، وہ جب پوری مجلس سنو تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کہیں کا ہے، کہیں لگایا، وہاں سے نکالا، لفظ نکالا، اور ہم ہی بول رہے ہیں کٹ 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 کٹ، جو کٹتا جاتے ہیں نا بس سمجھ لیا کریں کہ یہاں پہ ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو خیر وہ فنکاری کی گئی تھی اور پکڑے بھی گئے ہیں کچھ لوگ، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بالکل خبر صحیح ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے اور یہ فیک ہے، یعنی ایڈٹ کی گئی ہے، کچھ ہوا ضرور ہے تھوڑا سا، لیکن اس کو ایڈٹ کر کے ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، یہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پریشان ہے کہ کیوں ہوا، کیا کیا کر رہے ہیں، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک اپنے جہاں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک اشارہ کیا بلکہ کھل کے بات کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، تمام عزاداروں سے، پورے پاکستان کے عزاداروں سے، ماتمداروں سے، ایک اپیل کر رہا ہوں، ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک التجا کر رہا ہوں، اپنا بھائی سمجھ کے سن لیجئے گا، ماننا نہ ماننا آپ کا اختیار، خدا کے لیے کبھی غور کیجئے کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی حرکتیں کی جائیں جن کا عزاداری سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا ماتمداری سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا نوحہ خانی سینہ زنی سے کوئی تعلق نہیں، ایسے نئی نئی چیزیں ڈالی جائیں، الزام کس پہ آئے، عزاداروں پہ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا اس کلپ کا الزام کس پہ آ رہا ہے، عزاداروں پہ آ رہا ہے نا، تو آپ کو بھی تھوڑا سا ہوشیار رہنا پڑے گا میرے بھائیوں، کہ یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کا نام استعمال کرتے ہیں اور بیچ میں گھسڑ دیے جاتے ہیں دوسرے لوگ، ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں، فتنہ کرانے والوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے، اکثر وہ ہوتے ہیں جن کا ہماری شیعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ کالے کپڑے پہن کے مولائی بن کے آپ میں گھس جاتے ہیں اور وہ آپ شو کریں گے جیسے اس سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہوتا، آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہاں سے آگے بھائی ہمارے اندر، لیکن بس مولائی بن کے اور وہ ہمارا جو ہے کام خراب کر رہے ہوتے ہیں تشیعوں کا، यानी तशय्यु को एक तमाशा बनाना, ऐसी ऐसी नए नए आइटम ला ला के एक दिन छोड़ देना। कहा चंद लोग करते हैं, फिर वो दूसरे सीधे सादे लोग देते हैं, कहते हैं ये कर रहे हैं तो कोई अच्छे काम होगा, चलो हम भी करें, है ना। ऐसे नहीं, आजादारों से गुजारिश करो कि आप होशियार हैं, आप अली के मानने वाले हैं, आप हुसैन के मातमदार हैं, तो आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। ये आपके सफों में घुस के और आपको इस्तेमाल करते हैं, आपका नाम इस्तेमाल होता है। देखे ना, एक क्लिप की वजह से आजादारों को हम सब, भाई आजादार आप जानते हैं, मैं आजादार जब कह रहा हूं किसको कह रहा हूं, याद रखिए एक उसूल याद रखिए, वो शिया है ही नहीं जो आजादार नहीं है। शिया अगर आजादार नहीं होगा, शिया से क्या ताल्लुक है। इसीलिए आप देखिए आजादार में सब है, हाथ से मातम करने वाला भी आजादार है, नोहा पढ़ने वाला भी आजादार है, मरसिया पढ़ने वाला भी आजादार है, जिक्र करने वाला जाकिर अहले बैत भी आजादार है, खतीब भी आजादार है, आलिम भी आजादार है, हमारे फुकहा आजादार हैं, हमारे मराजे आजादार हैं, हर मर्जे का अपना हुसैनिया है, जहां भी है, मशहद में, नजफ में, कुम में, करबला में, हुसैनिया यानी इमाम बारगाह हुसैनिया कहते हैं ना, वहां सबके हुसैनिये हैं, वहां आशरे होते हैं, वहां मजालिस होती है, पूरा साल होती है। अय्याम फाजियों को जो तो कोई आजादारी के बगैर शियत का तस्वूर है ही नहीं भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं आजादारों को बहुत होशियार रहना पड़ेगा, चाहे वो खुतबा के तबके से हो, उलमा के तबके से हो, मातमदारों के तबके से हो, नोहा खान, और मुझे भी ये लफ्ज कह रहा है, लेकिन मैं हमेशा पहले कहता था नोहा खानी और सीना जनी, तो ये नोहा खान और सीना जन हो, जो भी हो, ये सबके सब क्या है, सब आजादार हैं। लिहाजा सारे आजादारों को होशियार रहना पड़ेगा। मिसाल देता हूँ आपको तारीखी, पहले पढ़ा है लेकिन आज बहुत जरूरी होगा देना, एक सलावत देखिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मिसाल देता हूं, वो जो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ छोड़े जाते घुसेड़े जाते, वो हमारे बन के, आप भाई कम से कम इसका हसब नसब तो देखो ना, कहां से आया एकदम अचानक, कहां से आ गया, 150 आदमी उसके पीछे लगा दी, तुम चल ले, वो उसके पीछे पीछे जा रहे हो, वो जनाब एकदम होते होते इतना मशहूर, भाई क्या चक्कर, क्या कौन है, कहां से आ गया, भाई हुआ क्या, इतना पूछने की फुर्सत ही नहीं किसी को, क्योंकि प्लांटेड लाया जा रहा है ना, कहीं बाहर से इंपोर्ट किया गया हमारे लिए, या किसी ने एक्सपोर्ट किया बाहर से हमारे लिए, समझ में आ रही है हमारी बात। मिसाल देता हूं नुसैरी, एक कहानी किस्सा है उसके लिए, हालांकि पहले भी पढ़ चुका हूं इस बारे में, लेकिन अब मौका है, अच्छा है, मेरे सारे भाई सुनेंगे, ये मैसेज जाता है, मस्जिद जाती है, अब नेट के ऊपर जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे सारे अज़ादार भाई सुनेंगे, जहां भी होंगे पूरे पाकिस्तान में, क्या हम तो सबके लिए बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क में जहां जहां उर्दू अज़ादारी होती है, हर जगह के लिए बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह सबके काम आएगी ये बात। नुसैरी का जब किस्सा आएगा तो एक कहानी गढ़ी कहानी सुना दी जाती कि मौला के जमाने में था एक शख्स नुसैरी, और जनाब उसने मौला को खुदा का, मौला ने उसको कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसने कहा भाई मौला आपका चाहने वाला तो जिंदा कर दे, मौला ने फिर जिंदा कर दिया, उसका अकीदा और पक्का हो गया कि लो जी ये तो है ही, मार के जिंदा तो अल्लाह करता है। खुदा के बंदों को खुदा का खौफ करो, इस शख्स का कोई वजूद ही नहीं है मौला के जमाने में, मोहम्मद अन नुमैर अन नुसैरी कब आया ही है, 10वें इमाम के जमाने में, 10वें और 11वें इमाम के जमाने का, जिसको बहस करनी हो आ जाए मेरे पास, मैं तारीख पढ़ाता भी हूं पढ़ता भी हूं, चैलेंज कर रहा हूं। अब किसी ने गढ़ के किताब में नहीं नहीं लिख दिया तो वो हवाला नहीं होता, हवाला वो होता है जिसका तारीखी हवाला हो, सदियों का हवाला, उसको हवाला कहते हैं। तो ये मोहम्मद अन्नुमैर अन्नुसैरी, ये 10वें इमाम के जमाने में अब्बासियों ने प्लांट किया था, जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रही बात, यानी जैसे अब प्लांट करके हमारे अंदर डाले जा रहे हैं ना, प्लांट करके छोड़े जा रहे हैं कि खताब करो, अज़ादारी को खराब करो, अज़ादारी के रस्मों को खराब करो, अज़ादारी की इबादत को खराब करो, थोड़ा ये डालो थोड़ा वो डालो, खत्म करो अज़ादारी के, एक इसको कोई और ही चीज बना दो, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो बना दो, बस इनको खत्म, यही से इनको खराब करो। तो नुसैरी को प्लांट किया था, क्योंकि इमाम कैद है कहां, सामरा में, 10वें भी 11वें भी वही ना कैद, शियों पर पाबंदी, कोई मिलने जा नहीं सकता, मिलने आ नहीं सकता, इसको प्लांट करके इसके गिर्द मजमा इकट्ठा किया बाबा वालों का, समझ आ रही बात, बाबा वालों का मजमा, इसको नहीं मार रहे शियों को, मार रहे हैं इसको, नहीं मार रहे जो अली को अल्लाह कह रहा है, क्यों, बनाया ही नहीं ना, लिहाजा इन पर मुकदमे नहीं बनेंगे, इनको छोड़ दिया जाएगा, इनके फौरन, अब मैं क्या अर्ज करूं, यहां से भगा हुआ वहां से पहुंचा हुआ, क्योंकि उनके अपने आदमी है ना, समझ आई हमारी बात। तो नुसैरी को कुछ नहीं कहा जा रहा, नुसैरी के गिर्द मजमा इकट्ठा किया, ला ला के इकट्ठा किया कि जब इसके पीछे जाओ सब इसके पीछे जाओ, मरकज बनाए जाते हैं गुमराही के, और उन मराकज में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, प्लांटेड लोगों को बुलाया जाता है, उनकी तकारीर नश्र की जाती है सतह पे, ताकि नौजवान नस्ल, ये बच्चे हमारे, इनको बहकाया जाए, इधर उधर भटका दिया जाए, समझ में आ रही है बात। ये सब किया कि तो नुसैरी वो शख्स था जब दसवें इमाम को कैद में मालूम हुआ था तो तीन बार इमाम ने कि जिस पर इमाम लानत भेज दे मैं उसको अपना पेशवा बना सकता हूं बताओ। इमाम ने कहा था मलून है मलून है मलून है, यानी ये लानत ज़दा है ये लानत ज़दा है ये लानत ज़दा है, जिस पर इमाम लानत भेजे मैं उसको अपना पेशवा बनाऊं, जिस पर इमाम लानत भेजे मैं उसको अपना रहबर बनाऊं, जिस पर इमाम लानत भेजे मैं उसको अपना मजहबी पेशवा बना दूं, उसके पीछे चलूं। वही चीज लाई जा रही है ना दोबारा, पर समझ लो कि वो पहले अब्बासियों ने प्लांट किया था अब अब्बासियों के रिश्तेदारों ने प्लांट किया है। समझ में आई नहीं समझ में आई तो अब मैं इसे आसान तो समझा नहीं सकता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, आंखें खुली रखो, खुली रखो आंखें अपनी, शऊर से काम लो, जिसकी मर्जी घुसाए मौलाई बन के और हमारे दरबार घुसा, जिसने काले कपड़े पहन लिए ज्यादा मौलाई, बेचारे मेरे जैसे ने नीले पीले पहन लिए तो ये तो मौलाई है ही नहीं, इसमें तलाश कर रहे हो। अब इसमें तलाश किया जाएगा तशय्यों को, अल्लाह के बंदो ऐसा ना करो, जमाना कयामत की चाल चल रहा है हमारे खिलाफ, जितनी साजिशें आपके खिलाफ हो रही है दुनिया में किसी के खिलाफ नहीं हो रही, क्यों? आपने मारा है, आपने जूते लगाए हैं यजीदियत को, आपने रुस्वा किया है साम्राज्य को इराक में लुबनान में शाम में यमन में, तो साजिशें उन्हीं के खिलाफ होंगी ना जिनसे मार खाएंगे, तो तशय्यो तशय्यो है, हमें कौन शिकस्त दे सकता है, हमारा सर कौन झुका सकता है, लेकिन होशियार तो रहो इन अनासिर से, इन एलिमेंट से होशियार रहो जो बजाहिर अपने भेद बना के हमारे अंदर घुस जाते हैं। और इफराद और तफरीद वाले दोनों तरफ कह रहा हूं, उधर भी हैं जिनको आजादारी की हर बात में मुश्किल नजर आती है, ये गलत वो गलत, उनको वो इसी में पूरे हुए जा रहे हैं, और एक वो जो कि नई नई चीजें आइटम डालते चले जा रहे हैं, इन दोनों से हमारी मुश्किल ये होगी कि हमें सबको देखना पड़ रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, पानी दो बेटा, उस जमाने में जब शिया उलमा को मारा जा रहा है, फुकहा को कत्ल किया जा रहा है, ऐसे लोग आजाद हैं, वो आजाद फिर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि असल तशय्यु के दर्जे, क्यों? जब वो बातें करते हैं तो उनको दलीलें मिलती है ना, ये राफिजी हैं, देखो ये देखो ये राफिजी हैं, ये देखो ये मुशरिक हैं, ये देखो ये, समझ में आ रहा जो आज कर रहे हैं, उन्हीं को दलील बनाते हैं ना, उन्हीं को दलील बनाते हैं, तो इसका मतलब ट्रेनिंग के तहत मनसूबाबंदी के तहत करवाया जा रहा है ना। तो मेरे अज़ादार भाइयों जहां भी हो खुदा के लिए साजिश को समझो, आप लश्कर हो हुसैन का, वो हुसैन के लश्कर में दरारें डालना चाहते हैं, आप सिपाही हो इमाम जमाना के, वो आपके अफकार को गलत करना चाहते हैं, अल्लाह के बंदो ऐसा ना करो। इंतजार कर रहा है कोई पर्दे गैबत में, कब इशारा होगा कब तुम्हारी कमांड जाहिर तौर पे आगे संभालेगा, तो कैसा होना चाहिए इमाम के सिपाहियों को, इतना सादा नहीं होना चाहिए कि जमाने की चाल को समझ ही ना सके, जमाना कयामत की चाल चल रहा है तो अपने शऊर से काम लो ना, समझ लो ना कि कुछ हो रहा है, कोई खेल हो रहा है हमारे खिलाफ, तशय्यो के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, और वो ये हो रही है, और इंशाल्लाह उस जमाने में भी नाकाम हो एम ए ताहरीन के दौर में भी, और एम ए ताहरीन के बाद उनके नायबीन ने, आज हम जिन तीन शख्सियतों का जिक्र करेंगे हज़्ब वादा एक यहाँ की होगी, और हर रोज अब एक शहीद यहाँ का होगा बाकी वहां के, तो हमने कहा ना कि हमारी सरजमीन को ऐसे मत समझिए आप, बांध से तोड़िए, अगर कोई पढ़ाता नहीं कोई बताता नहीं तो और बात है, सब कुछ है यहाँ, जब आप तारीख खंगालेंगे तो देखिए जगह 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 उलमा ने आले रसूल के कारनामे बिखरे हुए हर जगह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा आज एक जहां से आगाज करो, मक्के की शख्सियत है, मक्के के रहने, अच्छा एक और बात है, मक्का और मदीना किसी भी जमाने में जाए अमन नहीं रहा, यानी जब से अल्लाह के रसूल ने हिजरत की है ना, जब से मोमिनी के लिए जाए अमन नहीं है किसी भी दौर में, ना मक्का ना मदीना, लेकिन उसके बावजूद ना मक्का ना मदीना कभी भी तशय्यों से खाली नहीं रहा, खाली एक ना एक मुजाहिद आलिम मोर्चा बना के बैठा रहा, बड़ी कोशिश करते थे उस वक्त के सुल्तान और जाबिर बादशाह कि भाई चले जाओ अपना सामान लेके, नहीं जाएंगे नहीं। और मैं कहता हूं हमारी जबान के, नहीं जाएंगे नहीं, तुम्हारे सीने पे यही मूंग डालेंगे। हाँ ऐसे ही है। तो हर जमाने में ये पस मंजर बता रहा हूं। मसलन अभी देखिए ना, इतने सख्त मामले 100 साल ये ज्यादा थे। आयतुल्ला आमरी 105 साल के सिंध में उनका इंतकाल हुआ है, इसको शहीद जिंदा भी कहते हैं, इसलिए कि 3 बार अपने ख्याल में उन्हें मार दिया था। ले जाते थे हेलीकॉप्टर सहरा में फेंक देते थे, और जब वापस आते थे कहते वो तो वही है, बागे आबिद कहलाता था ना, कि अब भी बागे आबिद कहते वो तो वही है, नमाज पढ़ो। तो डर गए थे। 40 साल इस शख्स ने कैद काटी, 25 साल कंटिन्यू। जब आले सऊद आए हैं ना, गलबा हुआ है 1926 में, उस वक्त ये नौजवान थे, जवान यानी 19, 20 या 22, 23 साल के, इससे ज्यादा नहीं। उस वक्त से इनका मारिका शुरू हुआ, क्योंकि सारी इनकी प्रॉपर्टी बाग जमीन सब पे कब्जा कर लिया था ना, सब ले लिया था। मुकदमा लड़ते रहे, गए नहीं। ऑफर हुई पैसा ले चले जाओ, जाओ फलाम चले जाओ जहां तुम लोग रहते हो, कह नहीं यही गाँव में यही रहूंगा। गए क्यों? ताकि ढारस बने रहे उस इलाके के जितने भी मुठ्ठी भर मोमिनीन उनकी बने रहे। मोहल्ले ढा दिए गए, पहले मोहल्ले बनी हाशिम था मोमिनीन का, तौसी के बहाने मस्जिद नबी की तौसी करे, सब लोडर से बराबर कर दिया गया। दूसरे मोहल्ले में जाके रहे थोड़े से, यहाँ मार्केट बनेगी उसको बाद। अब आजकल जहां रहने उस इलाके का नाम क्या है? अल अवाली। वो जो महल है मदीने का, मदीने की बात कर रहे हैं, मदीने का जो महल है उसका नाम है अवाली, अल अवाली। अवाली में सब मोमिनीन, कब के मोमिनीन, अभी के नहीं है, जब से, यहां तक कि हाशमी नस्ल भी मौजूद है जिनको हाशमी ही लिखा जाता है उनके नाम के साथ, हाशम असल हाशमी, जिन्हें छोड़ा नहीं आज तक मक्का मदीना, मदीने में भी है और मक्के में। मक्के में इनको और निकालते निकालते धकेलते धकेलते अजीजिया के पीछे, नाम मुझे नहीं याद क्योंकि बहुत पास से पहले वहां गया था, मेरा ख्याल है कोई 20 साल पहले गया था। तो एक मोहल्ला है वहां पर रहते हैं, गुर्बत के आलम में, लेकिन है गए नहीं छोड़े। क्यों? मोर्चा नहीं छोड़ना हर एक के लिए। देखिए ना, हिजरत को अल्लाह ने मना नहीं किया, याद रखिएगा, अल्लाह का भी हुक्म है, रसूल का भी हुक्म है, सबका हुक्म है। रिस्क तंग होता है, हिजरत कर लो, नौकरी करनी है हिजरत कर लो, जान को खतरा है हिजरत कर लो, तालीम के लिए हिजरत कर लो, मैं प्रेयर कर लो, हिजरत कोई पाबंदी नहीं किसी, लेकिन बाज लोगों के लिए पाबंदी, बाज लोग नहीं कर सकते। वो जिनकी जिम्मेदारियां सिवा होती है ना, सिवा धारस होते हैं ना कौमों की मिल्लतों की, अगर वो भी चले जाएं लोगों की हिम्मत टूट जाएगी, अब क्या होगा? ये भी चले गए छोड़ के, जाना आसान है ना, पनागाहों में चले जाना आसान है, यहां फितना कराओ फसाद कराओ पनागाह में चले जाओ, ऐसे नहीं होता। अगर कोई बात कर रहे हो तो मर्दों की तरह डटे भी रहो, ये होती है मर्दानगी। तो ऐसी तारीख हमारी भरी हुई है ऐसे मुजाहिदों से, नहीं छोड़ी जगह, क्यों जाए, यही जीना मरना सब इन्हीं के साथ, नहीं जाएंगे। बाज लोगों ने हिजरत की तो हुक्म से की, इमामों के हुक्म से की या मराजे के हुक्म से की, मराजे ने हिजरत कही, चले जाओ यहां से, फला इलाका तुम्हारा है उस जगह पे जाओ, ऐसा हुआ। बस मोहम्मद मक्की 7वीं हिजरी का अवाइल का शहीद हमारा आलिम फकीह मोहम्मद इब्ने यूसुफ इब्ने मूसा इब्ने अबी बकर मलहबी है और बाजी है मक्की, ये बनी मलहब या कबीले मलहब था, इनका शाखे बनती जाती है ना, और बाज मोहल्ले का नाम था, अब मोहल्ला तो मिट गया जैसे मैंने बताया, लोडर फेर दिया गया खत्म हो गया, लेकिन उनके नाम के और बाज अभी मक्की तो थे, तो मोहम्मद मक्की नाम रह गया। किताबें इन्हें बहुत लिखी, फकीह थे फकीह, मगर वो सब 10 मुर्दे जमाना के हाथों महफूज ना रह सकी। एक किताब आज तक बाकी 800 साल के बाद भी, वो किताब है फरहंग कुरान 3 जिल्दों में, मैंने आंखों से नहीं देखी लेकिन इसके बारे में पढ़ा, जैसे अल्लामा अमीनी ने अपनी किताब में लिखा कि मेरे किताब खाने में है, और उलमा ने लिखा कि उनके किताब खानों में नजफ में यहाँ 3 जिल्दों में फरहंग कुरान। फरहंग कहते हैं, डिक्शनरी नहीं कहते, जैसे लुगत अलमुनजिद फिरोजुल लुगात ये सारी है ना, इस तरह से 3 जिल्दों में लिखी है फरहंग कुरान के नाम से, फरहंग की किताब है 3 जिल्दों में लिखी, वो आज तक बात। अच्छा फकीह तो थे, आवाज भी बहुत अच्छी थी, अदीब भी थे खतीब भी थे, और ऐसे इलाके में मक्के में रह रहे हैं भाई, जब मक्के में रह रहे तो तबलीग की इजाजत नहीं है, लेकिन खाने काबा में बैठ के उलमा से बहस करते थे, बहस मुबाहसा करते थे, सारी फिकहों पे उबूर था, उनसे बहस मुबाहसा करते थे बाकायदा। वो आजीज हो जाते थे। अब जब आजीज हो जाते थे तो जो लोग मक्की आए हुए होते थे उन पर तो असर होता था ना, अब वो इनके पीछे जाते थे इनकी जगह पे, भाई ये कहा रहते हैं इनके पास, जो बड़ा आलिम है ये बड़ा आलिम। अब इनकी शोहरत बाहर तक फैल गई, तो चाहा हिजाज के गवर्नर ने कि भाई आप चले जाए यहां से, चले क्या मैं क्यों चला जाऊं, अपना घर बार छोड़ के क्यों जाऊं, क्या किया मैंने, किस जुर्म के बिना पे लेर थे नहीं गए। तो फिर ओलमा ने वहां जाल बिछाया इनके खिलाफ, वो जो हमेशा होता है ना, किसी को शिया को जैसे मिलकर राफिजी कह दो, राफिजी है कुरान में तहरीक का काइल है, फला फला को बुरा कहता है, ये तो सबसे आसान नुस्खा होता है ना हर जमाने में, नाजुक बलागा में पढ़ लीजिएगा, मौला कायनात को भी ये हर बार इस्तेमाल किया था, एक ने खत लिखा था ना, आप फला 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 को नहीं मानते, उनकी आपने मुखालिफत की तो मौला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, नाजुक बलागा में मौजूद है, कहा उनकी बात छोड़ तू अपनी बात कर, तो वो अल्लाह की बारगाह में है ना, हो गया उनका हिसाब, तू अपनी बात कर, तू कौन है मैं तुझे बताता हूं, अब मैं बताऊंगा नहीं वरना रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि रिश्तेदार कहां कहां बैठे हुए, वो तो अब मालूम हुआ 2 साल के अंदर के, ओहो इतना बड़ा खानदान लगा हुआ भाई माशाल्लाह, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना भाई, सीधी सीधी सी बात है ना, आले रसूल को बुरा कह लो बुरा नहीं लगता, अली को बुरा कह लो बुरा नहीं लगता, करबला के खिलाफ बात करो बुरा नहीं लगता, अहले बैत के खिलाफ बात करो बुरा नहीं लगता, तौहीन रिसालत हो जाए बुरा नहीं लगता, तौहीन अहले बैत हो जाए बुरा नहीं लगता, लेकिन जहां रिश्तेदार को कुछ कहा, अब समझ में आई, तो शुक्र अदा किया करो कि ये करबला आज तक मौजूदा ही मौजूदा है, इस करबला के बहाने आज तक लोग बेनकाब होते चले जा रहे हैं, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना, तो भाई गवार है ना, सब गवार है ना, मैंने किसी के रिश्तेदार का नाम नहीं लिया, एक बार और सलावत इनायत फरमा दीजिए, वो हम अपने बच्चों को नए पढ़ने वालों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं लेकिन इस वक्त कोई सीखने को तैयार नहीं है, अरे हमारे पास हजारों रास्ते हैं, सीखो तो सही, बात करने का सलीका, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, तिल मिला के रह जाएंगे, कुछ कह भी नहीं सकेंगे, एक बार और सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, चलिए तो अब क्या किया जाए। फिर जनाब सफर में थे, मक्के से जा रहे थे मदीने की तरफ ज़ियारत के लिए, हज का जमाना था, वहीं हाजियों के भेष में आए जो है हमेशा से कि मस्जिद में घुस के मार दो, यहाँ मार दो वहाँ मार दो, बेचारे को रास्ते में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, कहीं कब्र वर कुछ भी नहीं है मक्के में, कहीं बस नाम तारीख में जिंदा, एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, नाम तारीख में, आप जानते हैं मुजाहिदों के नाम थोड़ी मिटते, नाम जिंदा रहते। अब एक अपने यहाँ के मुजाहिद का जिक्र करेंगे, फिर शहीद अव्वल का जिक्र करेंगे आपके साथ, और फिर ये भी कि शहीद अव्वल क्यों कहा गया, उनसे पहले भी इतने सारे शहीद हुए, तो शहीद अव्वल क्यों, वो शहीद सानी क्यों, उनके क्योंकि शहीद अव्वल के बाद ना मालूम कितने शहीद हो गए, तो शहीद सानी क्यों, और शहीद सानी के बाद हजारों शहीद हो गए उलमा फुकहा, तो शहीद सालिस क्यों, और शहीद सालिस के बाद इतने सारे शहीद हो गए, तो शहीद राबे, शहीद राबे से पहले शुरू कर रहे हैं इत्तेफाक से, मिर्जा मोहम्मद कामिल पंजा शरीफ देहली, आजकल वहीं है मस्जिद शहीद राबे नाम है मस्जिद, और मदरसे शहीद राबे में मदरसा भी है, पहले यतीम खाना था, 100 साल पहले यतीम खाना बनाया गया था उसे, और क़िबलतुल्लमा आका हसन साहब क़िबला, यानी उनका भी नाम था कल्बे सादिक, इन कल्बे सादिक के दादा, ठीक है ना, इन कल्बे सादिक के डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जो थे इनके दादा का नाम भी कल्बे सादिक था, अब आसान हो गया समझना, कल्बे सादिक साहब पहले, यानी कल्बे सादिक अव्वल, लेकिन कभी दोनों के बारे में पढ़ देंगे कि क्या कदर मुश्तरक थी और कैसे अल्लाह का करम था इन लोगों पर, कि हर एक अपने अपने ज़माने का नाबिगा था, हर एक अपने ज़माने का नाबिका था इस ख़ानदान का। खैर जनाब, अब क्योंकि ख़ानदान भी मेरे ही है तो फिर बुरा भी लगता है कि अभी कहाँ तक कह जाए, लेकिन कहाँ तक छुपाए भी तो कहाँ तक छुपाए, कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि जब तारीख का जिक्र करूँगा इस ख़ानदान का जिक्र तो आएगा ना, आज भी आएगा, देखिएगा, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अरे अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं क्या मामले से तालीम लूँ, वो हस्तियाँ और हैं। खैर तो मदरसे शहीद राबे, मस्जिद शहीद राबे पंजा शरीफ देहली, वहीं उसी मस्जिद में उसी मदरसे में इनकी मज़ार है, मैं वहाँ गया हूँ मजार पे मैंने फातिहा खानी भी की, वहां मजलिस भी मैंने पढ़ी, उस मदरसे में मस्जिद भी है और मदरसा भी, मदरसा शहीद नाबे। तो क़िबलतुल उलमा आका हसन साहब क़िबला ने उसकी बुनियाद डाली थी यतीम खाने की वहाँ, और यतीम खाना 100 साल तक रहा, वो शिफ्ट हो गया क्योंकि मदरसा बन गया, जगह बड़ी चाहिए थी यतीम खाने के लिए। तो उन्होंने ही इफ्तिताह किया था 100 साल पहले, क़िबलतुल उलमा ने आका हसन साहब क़िबला ने, यानी क़ल्बे सादिक़ अव्वल ने इफ्तिताह किया था। और लिखा हुआ है उसमें कि इतना बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ था कि जनाब स्टेशन से वहाँ तक फूल वूल बिछाए गए सभी, खैर अच्छा ज़माना था। तो वो एक मरकज आज तक मरकज है। ये याद रखें कि दिल्ली में शियों की आबादियाँ तो कई जगह हैं, मराकज भी हैं बहुत सारे, जैसे इमामिया हाल एक मरकज है, दरियाबाद में एक मरकज है, और हिंदू बाड़ा राम राव या कुछ ना करके नाम भूल रहा हूँ, नाम भी तो बड़े अजीब व गरीब से होते हैं। तो मैं भी वहाँ मस्जिद भी पढ़ने गया था शिकारपुर के, मोमिन बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर रहते हैं, हिंदू बाड़ा राव या राम राव या कुछ ऐसे करके नाम है, तो वहाँ पर वो रहते हैं शिकारपुर, वो भी एक मरकज है। लेकिन दो मरकज दिल्ली के बहुत बड़े, दो मरकज इसलिए बता रहे हैं कि कभी जाना हो किसी का तो इन दो जगहों पर ज़रूर जाए। एक है शाह मर्दान और एक है पंजा शरीफ। शाह मर्दान वो है करबला जहाँ पर ना, बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ी, अभी मुकदमा भी जीता है मोमिनीन और काफ़ी ज़मीन वापस भी मिली है। ये सब इसलिए बताता जाता हूँ कि भूलना मत अपनी तारीख का, जी तो ये ना समझो कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, बताते नहीं है ना लोग, बताएं तो मालूम होगा बच्चों को, स्कूल में तो नहीं पढ़ाएंगे आपकी तारीख पढ़ाएंगे क्या, कॉलेज में आपकी तारीख पढ़ाएंगे भाई, यही है मेंबर यहाँ से अगर कोई तारीख नहीं पढ़ेगा तो लोगों को मालूम कैसे होगा। इसलिए नाचीज कोशिश करता है तारीख बयान करने की, ताकि लोगों को अपने पुरखों की अपने बुजुर्गों की तारीख मालूम हो, फख्र करें, और शायद कोई पैदा हो ऐसा जिसमें ये जज्बा ये शौक ये जुनून हो कि मैं भी अपने बड़ों की तरह, मैं भी अपने बुजुर्गों की तरह कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, मजहब के लिए भी और मिल्लत के लिए भी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, माशाल्लाह। तो ये एक है शाह मर्दान मरकज, वहाँ भी इस नाचीज़ को मजालिस पढ़ने का, और वहाँ बड़े तबरुकात भी, मैं एक चक्की वगैरह भी रखी हुई है, और उसकी अपनी एक तारीख है तबरुकात की, और कदम शरीफ के भी निशान है, सब कुछ है। वह ज़ाहिर कदीम सदियों साल पुराने, मैं तो कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन है तबरुकात है, मरकज़ है बहुत बड़ा, बहुत कदीम सदियों पुराना। दूसरा मरकज़ है ये पंजा शरीफ, दो बड़े मरकज़, वैसे तो मैंने ऐसा कर दिया बहुत सारे हैं छोटे बड़े मराकज़, द्वारका में भी एक बन गया है जहाँ तक मेरी तय, द्वारका नहीं वो इलाका जो वहाँ का है, वो द्वारका ना समझिएगा जहाँ महमूद गजनवी गया था, ये द्वारका आबादी है दिल्ली। मैं इसलिए भी याद रखता हूँ कि ना मालूम कब क्या हालात होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा ने चाहा कोई परचम लहराए ना लहराए, अब्बास का परचम तो लहरा ही देंगे इंशाल्लाह। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तमन्नाएं हैं दिलों की, परवरदिगार मुमकिन है पूरी हो जाए हमारी ज़िंदगी में, नासी हमारे आने वाली नस्लें देखने, कुछ ना कुछ तो देखेंगे इंशाल्लाह, दिल ये कह रहा है कि कुछ देखेंगे ज़रूर। खैर जनाब, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो दूसरा हमारा मरकज़ है पंजा शरीफ, इस पंजा शरीफ की भी अपनी तारीख, अब देख लेना इतना कदीम है कि 200 साल पहले की बात है उनकी शहादत, शहीद राबे मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल, ये है शहीद राबे इस सरजमीन में, और वहाँ शहीद बाकुल सदर को भी क्या कहा जाता है, शहीद राबे, कोई हरज नहीं है। जैसे शहीद सालिस दो हैं, काजी नूरुल्लाह शास्त्री जो आगरे में हैं, इनका भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल या परसों, और शहाबुद्दीन तुस्तरी, उनको भी शहीद सालिस कहा जाता है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि वाकयात एक जैसे हैं ना, मुकावमत एक जैसे। तो आइए ये शहीद राबे क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल हनफ़ियुल मसलक थे, यानी मजहबन हनफी थे और सूफी मसलक थे, हनफी मजहब थे और सूफी मसलक थे, फिक़्हे हनफी के पैरोकार थे और सूफियाना जो रहता ना सूफियों का एक गिरोह, सूफी हर जगह याद रखिएगा, सूफी कोई एक फ़िरका नहीं है, हनफी भी सूफी हो सकते हैं, शाफी भी सूफी, हम्बली भी सूफी, जाफरी भी सूफी, सब सूफी हो सकते हैं, सूफी एक अलग ही, कभी इस पर पढ़ देंगे सूफिया पे तो आप हो गए मैं अच्छे बुरे बाल, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि तकलीद के मुकाबले में तो मुझे बताना पड़ेगा ना, तकलीद के मुकाबले चाहे अखबारियत आए चाहे सूफियत। तो ये सूफी मसलक थे, हनफी मजहब थे, और किसके शागिर्द, हजरत शाह वलीउल्लाह, हजरत शाह वलीउल्लाह कौन, जिन्होंने तोहफ़े इस्ना अशरी किताब लिखी थी हमारे खिलाफ 11 जिल्दों में, अब भी है तोहफ़े इस्ना अशरी, इसके बड़ा हवाला दिया था, सारी दुनिया में उसके हवाले दिए जाते हैं, ये किताब लिखी थी ना हमारे खिलाफ, और लिखी क्यों थी, उसकी वजह भी लिखी, उसकी वजह ये लिखी, पहले आपको बता दें क्या हुआ क्या था, कि ये वो जमाना है कि जब दीदारी और बेदारी की तहरीक तशय्यों की पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, हजरत उस्मान साहब अलैहि रहमा की क़यादत में, जब वो नजफ से पढ़ के आए और पहला, मैं कल भी कहता पहला मुश्तहिद पहला मर्जे तकलीद इस सरजमीन का बड़े शरीर का पहला मर्जे तकली हजरत कुरान बाप अरे काजी नूरुल्लाह शास्त्री मुश्तहिद जरूर हैं लेकिन मर्जियत के मकाम पर नहीं थे क्योंकि काजी का ओहदा लिया हुआ था ना लाहौर के काजी थे औरंगजेब आलमगीर की तरफ से याद है ना आपको ये तो तारीख में थोड़ा सा खैर नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा कोई ऐसी बात नहीं तो आप समझ में आ रहा है कि मिर्जा मोहम्मद कामिल उनके शागिर्द उन्होंने तोहफे असनाशरी लिखी 11 जिल्दों में और ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनसे लेके नकल करते जाते थे ना एक एक कापी ये उनके शागिर्द थे जाहिर है तो इनको दी जाती थी ताकि दूसरी कापी छापखानों का तो इतना था नहीं तो ये लिखते थे उसकी नकल बनाते जाते थे उस दौर में हजरत गफ्फार माहब की तहरीक शुरू में वजह लिखते हैं कहने कि अब ये मजबूरी हो गई ये सब करना क्योंकि ये जो इनकी तहरीक चली है इससे मुझे डर है कि पूरा हिंदुस्तान शिया ना हो जाए इतनी जबरदस्त तहरीक थी वो कि हर घर में एक मुहावरा हो गया था कि कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में कोई ना कोई एक फर्द शिया ना हो अब आप सोचिए ना रेडियो ना टीवी ना अखबार कुछ नहीं नेटवर्क हजरत गफ्फार माहब ने ऐसा बनाया था अपने शागिर्दों का अच्छा अभी ये कि हर चीज हर मसले का कहीं भी मसला था तो जवाब ऐसा लिखते थे कि सबके काम आ जाए हिंदुओं मुसलमानों सब पर अब होते होते अब घबराहट पैदा हुई सब जगह तो अब इन्हें तोहफे असना शरिया लेकिन इसके बहुत जवाब आ चुके कई लोगों ने जवाब लिख दिए इसके तो और उस जमाने में भी आ रहा था इमादुल इस्लाम 10 जिल्दों में थी अब तो बहुत सारी जिल्दों में उसका वो होली शाया होने वाली है इमादुल इस्लाम यानी हजरत कुमार माफ की मारिकतुल आरा किताब अकायदे शिया के ऊपर कमाल है वो उसूलों फुरू के ऊपर अजीब किताब है सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर थक गए लगता है आप हजरात थक गए या ये बच्चा नहीं थका हाँ माशाल्लाह यार अच्छा बेटा बात सुनो अच्छा वो मैंने देख लिया बेटा ये किसकी बच्ची है बच्चे को यहाँ ना बिठाएं जो भी हैं बेटा आप लेके जाइए वहाँ खवातीन में वो आइंदा कोई मजलिस में बच्ची को नहीं लेकर आए ये ना टोकना किस बात का सब देखा आपने जुलूसों में क्या हो रहा है खवातीन अलग होती थी सारी अब जो है वो सारे बच्चे मेरी प्यारी बच्ची हैं मेरी बेटी हैं लेकिन बच्चों को नहीं लेकर आए एक डेढ़ साल की दो साल की तक ठीक है चार साल की बच्ची होती है मुमैस क्या होती है मुमैस मुमैस किसे कहते हैं तमीज अच्छा नहीं सब बड़े बैठे हैं उसके मैं नाना दादा हूं आप में कोई बाप होगा कोई भाई के बराबर लेकिन नहीं ये तरीका नहीं बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं मर्दों की मजलिस में बच्चियों को अल्लाह का हुक्म किसी मसलियत के सबब है ना भाई जब अल्लाह का हुक्म है जब अल्लाह के रसूल का हुक्म है हम कौन होते हैं उसमें मीन मेख निकालने वाले समझ आ गई हमारी बात बुरा मत मानिएगा ये मेरे पर वाजिब है कि मैं आपको ये मसला बताऊं सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर ऐसे नहीं होता हमारी मजलिसों में ऐसे नहीं होता हमारे जुलूसों में भी ऐसे नहीं होता था खवातीन अलग होती थी एक जगह खड़ी हुई ज़ियारत की चले गए अब तो नहीं समझ में आता कि कहां तक बात जाएगी अगर नहीं टोका जाएगा वो टोकने का भी कौन सा असर हो रहा है कौन कौन रहा भाई लड़ने खड़े हो जाते किसी कुछ कह दो लड़ने खड़े थे वो हमसे लड़ गए भाई मैंने कहा अच्छा भाई जब तुम्हारी गैरत मर गई तो मैं क्या करूं जब तुम कह रहे हो कि मेरे बेटी है तो मैंने कहा तुम्हारी गैरत नहीं तो मैं क्या करूं तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि ना महरमों के मजमे में अपनी बच्ची को लेकर आ गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर तो ये मसले ये मसाइल हैं आजादारो हुसैन के शियो अली के शियो ये मसाइल हैं फिक्र पे कोई सौदेबाजी नहीं होती है ये फिक्री मसाइल है आइमा ने बताए अल्लाह का हुक्म है रसूल का हुक्म है इमामों का हुक्म है उसमें अपनी मर्जी कैसे चला रहे हो खैर आज तो चुकल तो माशाल्लाह चला ही रहे अल्लाह के अहकाम में तो अपनी मर्जी चला रहे हैं और क्या चलाएंगे सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर तो मिर्जा मोहम्मद कामिल उनके शागिर्द अब ये तहरीक ने इतना उरूज पकड़ा कि जहां भी जमीन हमवार हो तो असर तो होता है ना तो पढ़ा लिखा आदमी है और पढ़ रहा है मुसलसल दलीलें पढ़ रहा है अच्छा अब क्या हुआ कि जनाब उस तहरीक ने इतनी जड़ पकड़ी कि इन पर भी असर होना शुरू हुआ इन्हीं ने भी सवाल जवाब करने शुरू किए किसी के जरिए भेजते थे सवाल अच्छा इस सवाल का जवाब सवाल कहां से मिलते थे तो फैसला शरीयत तो फैसला शरीयत की नकल करते थे यहां से बड़े अपने ख्याल में मुश्किल मुश्किल में इस मसले का जवाब लाओ वो जना वहां से जवाब आता था अब जवाब देखते थे तो हैरान कोई दलील ही नहीं इसके बाद आ गया उस्ताद से पूछते थे तो उस्ताद आजिज कहते उस्ताद ये क्या मसला है ये नहीं बताते थे कि जवाब कहां से आया उस्ताद उस्ताद कहता था वही जो बात अरे तुम अपना काम करो बाकी बातें छोड़ो फिर ये समझ गए कि हक हक है हक उधर है صاحب انہیں نے مذہب حق کا اختیار کیا, حضرت عثمان مات کے گمنام سپاہی بن گئے, گمنام سپاہی بن کے کام شروع کیا. تو پہ اثناشری جو لکھتے جاتے تھے کیونکہ جواب تو دینا ہوتا تھا نا, لہذا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی بھیجتے تھے لکھنؤ, ماں بھیجتے تھے خاموشی سے, خفیہ طور پہ, خفیہ طریقے سے, تاکہ بات عام نہ ہو جائے. وہاں سے جواب آتا تھا تو یہ حیران ہوتے تھے, ابھی میں نے لکھا ہے جواب کیسے آ گیا فوراً, ابھی پبلک میں گئی نہیں جواب کیسے آ گیا. تو یہ وہ مجاہد تھا حضرت عثمان مات کا کہ خفیہ نہیں جانتے تھے لوگ, بعد میں لوگوں کو معلوم. خیر اب خوشبو تو نہیں چھپتی, تشیعوں کی خوشبو کہاں سے چھپے گی, نہیں چھپتی. یہ تو ایسے ہے کہ کہتے ہیں کہ سات پردوں کے نیچے, زمین کے سات طبقات کے نیچے ہوں, ساتویں آسمان کہیں بھی ہوگا, تشیع آخر اپنی خوشبو پھیلا دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہو گیا آخر کو ان کا راز, بیچارے کا راز پاش ہو گیا. جب راز پاش ہو گیا تو انہوں نے پھر مخائمت کی کہ بھائی اب تو ٹھیک ہے, اب تو ہو گیا تو ہو گیا. کہ شہید رابع بہت چاہا کہ واپس پلٹ آئے اور کسی طرح ان کا اعلان کرا دیا, لیکن کہ نہیں اب تو کھل گیا نا راز, کھل گیا تو کھل گیا, اب جواب دے دو. اچھا انہیں بھی لکھا نزہ اثناشری کے نام سے, تحفہ اثناشری کے جواب میں خود انہیں لکھا, 11 جلدیں تھی نا, 11 جلدیں لکھی. اب مکمل نہیں ہے کیونکہ ایک دو غائب ہو گئی ہے, بعد میں بہتوں نے لکھا اس کے جواب, لیکن یہ ساتھ ساتھ جواب لکھتے جا رہے تھے جلدوں کے ساتھ ساتھ, ایک ایک جلد کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ. تو پھر آخر بیچارے کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا, بےدردی سے ہٹے نہیں موقف سے اپنے لیے قدم نہیں ہٹائے پیچھے. نتیجہ ہوا کہ شہید کر دیا گئے, وہیں جہاں شہید کیے گئے وہیں کو دفن کر دیا گیا, وہی مزار ان کا بنا, انہیں کا بڑا مکان تھا وہی مزار بنا, وہی مسجد بنی, وہی آج موجود ہے مدرسہ شہید رابع کے نام سے اور مسجد شہید رابع کے نام سے, ایک بہت بڑا تشیع کا وہاں مرکز ہے. یہ مرزا محمد کامل تاریخ میں کہلائے شہید رابع, شہید رابع اس مسلک کے تھے, ادھر آگے ہٹے نہیں. پھر اچھا اب آئیے شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع کا فلسفہ کیا ہے, کیوں کہا جاتا ہے. اور اب وہ تھوڑا سا وقت آ گیا کہ آپ سے کہوں گے ذرا ذرا سا آگے آ جائیے تو اور مجھے آسانی ہو جائے گی. بیٹا تھوڑا سا بچے جوان آگے آ جاؤ, ایک سلوار بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد. پانی پانی اللہ یا رسول اللہ لبیک یا حسین 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 سلام یا اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر. آگے بڑھے یہ شہید اول شہید اول کیوں, شہید ثانی شہید ثانی کیوں, شہید ثالث شہید ثالث کیوں, شہید رابع شہید رابع کیوں. یہ تو اتنا ہے نا, ایک وجہ بتا دیتے ہیں وہی کافی ہے, باقی وجوہات کو چھوڑ دیتے. دیکھیں شہید پہلے بھی تھے سر, لیکن وہ شہادت اختیاری نہیں تھی. اختیاری شہادت اور غیر اختیاری میں فرق ہوتا ہے, یعنی ٹارگٹ کے لیے یوں ہی مار دیا گیا, شہید ہے نا, بادشاہ نے پکڑا پھانسی ٹانگ دو, پھانسی پہ ٹانگ دیا ہمارے علماء کو, راستے میں جا رہے تھے حملہ کیا شہید کر دیا, گھر میں گھسے قتل کر ڈالا, سفر کی حالت میں قتل کر ڈالا, سمجھ میں آ رہی, دعوت میں بلایا زہر دے دیا, ہیں تو سب شہید ہیں نا, شہید کیے جا رہے ہیں. یہ وہ پہلا شہید ہے جسے ایک سال زندان میں رکھ کے موقع دیا گیا, یعنی اس کے پاس پورا موقع تھا. اور زندان بھی جبکہ آج کی نہیں, کیسی قید, کتنی شدید قید کہ ان کا گوشت ختم ہو گیا تھا, جسم ہڈیاں رہی. اور صرف ایک بات اب میں آپ کو ان کا پورا کیس بتاؤں ہے کیا, پھر آپ کو معلوم ہوگا کیوں شہید اول, یعنی اس اسٹیج پر آ کے شہادت کو قبول کرنے والا ائمہ طاہرین کے دور کو گزارنے کے بعد یہ پہلا شخص تھا کہ جس کے سامنے زندگی بچانے کے دردنوں راستے تھے. लेकिन मिल्लत की खातिर इसने कि मिल्लत का कहीं हौसला ना टूट जाए, अगर मैंने इसे बार्गेनिंग कर ली, इसे सौदे ये होते हैं उलमा हकीकी बार्गेनिंग नहीं, सौदेबाजी नहीं, मार दिया जाऊं, झुका नहीं सकते हो तुम मुझे, ये शख्स था। तो उस जमाने में इतना तवील इनका मुकदमा था, कहां के हैं, पहले कभी बताया था शायद, या पहले अशरे में कहीं बताया था, जबल आमिल। जबल आमिल कहां है? लुबनान, जनूबी लुबनान का इलाका, पहाड़ी इलाका। मैं तो देखकर आया हूं, क्या लोग हैं और क्या सरजमीन है, अजीब इतनी सी तो जगह, और कैसे कैसे नाबिगा वहां पैदा हुए हैं, और क्यों पैदा हुए। ये जबल आमिल वो जगह है, ये जनाब अबू ज़र गफ्फारी को जिला वतन किया गया है, शाम भेजा गया, तो शाम में शामिल था ना ये सारा इलाका, शाम का इलाका था, शामात इसको कहा जाता था, शामात, हमास, हलब, ये सब मिला के शामात, लुबनान, फलस्तीन, सब शाम में था, बहुत बड़ी सल्तनत थी शाम की, यानी उस वक्त। तो उसने जो भी था शाम का आके, जानते ही आप, जबल आमिल भेज दिया पहाड़ों में, वो अबू ज़र गफ्फारी पहाड़ों में जो देहात थे छोटे छोटे, उनको उन्होंने अपने अकीदे का बना दिया। तो वो जनाब सारे अहले बैत के जितने कबाइल थे वो आते को, ये ना पूरा जबल आमिल शिया हो गया, पूरा जबल आमिल। अब वो घबराया, उसने खत लिखा, इसको बुला भाई, इसको पहाड़ों में भेज दो, समंदर भेज दो, कहीं भेज दो, बकौल मेरी मैं अपने जमाने को भी, उसने कहा होगा कि इसको समंदर में भेजेगा तो समंदर को भी शिया कर देगा, बुला इसको वापस। तो अब जिनको अबू ज़र ने शिया किया हो वो कैसे शिया होंगे, अब समझ में आए, अब उनकी बहादुरी का राज समझ में आया, समझ में आया उनकी दिलेरी का राज, जबल आमिल के लोगों की, लुबनान के शियों की। वो आज भी फख्र करते हैं कि हम अबू ज़र के बनाए हुए शिया हैं, अबू ज़र गफ्फारी के। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये जबल आमिल का और इत्तेफाक से शहीद अव्वल, शहीद सानी, दोनों जबल आमिल के दोनों, और इनका भी लकब, पहला नाम यही है मोहम्मद मक्की, लेकिन इनका लकब एक, वो लकब है शम्सुद्दीन, शम्सुद्दीन मोहम्मद इब्ने जमालुद्दीन मक्की, ये इनका पूरा नाम है। इनके वाली भी मुश्तहिद है, जमालुद्दीन मक्की, वो भी मुश्तहिद है, तो इनका नाम है असल में मोहम्मद रखा गया, लेकिन शम्सुद्दीन इनका लकब हो गया, शम्सुद्दीन मोहम्मद। और शहीद अव्वल कहता है, शहीद अव्वल के साथ बस कह मोहम्मद मक्की, शहीद अव्वल, लेकिन पूरा नाम क्या है, शम्सुद्दीन मोहम्मद मक्की। तब ये पढ़ने के लिए घर से निकले, हिल्ला जा रहा था, अल्लामा हिल्ली का जमाना था, तो सोचा कि अब तो निकल रहे हैं, उस वक्त तो जब एक बार पढ़ने गया तो भग गया, फिर किस्मत ही है जो जिंदा वापस आ जाए। बरसों के सफर होते थे, बरसों पढ़ने पढ़ने पढ़ने, वही घर हो गया, वही शादी कर ली, वही रह गए। जब पता चलो कि घर के माँ बाप के इंतकाल हो गया तो वही रह गए, ऐसा जमाना था, और कभी कोई वापस भी चला गया। तो कहा कि ज़ियारत क्यों ना कर लूँ, यंग थे, जवान थे, ज्यादा पहले 14 मासूमीन की ज़ियारत पर निकल गए। जब ज़ियारत करके नजफ से अब हिल्ला जा रहे हैं, अब नजफ से तो हिल्ला करीब ना, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, मालूम है, जरूर ज़ियारत पे गए, उनको मालूम है। तो कहा कि हिल्ला चलते हैं, क्योंकि अल्लामा हिल्ली की शोहरत है ना, अल्लामा हिल्ली का दौर है वो, कि अल्लामा हिल्ली से पढ़ेंगे। अब जब जाने लगे तो रास्ते में देखा एक जनाजा आ रहा है, हजारों को मजबूर, अब इनका दिल धड़का कि इतना बड़ा जनाजा किसका हो सकता है। धड़कते दिल के साथ लोगों से पूछा कि भाई किसका जनाजा है, कहाँ ले जा रहा है, अल्लामा हिल्ली का इंतकाल हो गया, उन्हें नजफ ले जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, रोना पीटना शुरू कर दिया, फिर जनाजे के साथ वापस आए। आप जानते ना कि अल्लामा हिल्ली मुकद्दस अर्दबेली ये सब हरम है, मौला कायरा पे दफन है, खाली ज़ियारत ना क्या करो, वहाँ पर जाके जरा अतराफ में इधर उधर जाया करो, देखा करो कितने बड़े बड़े अजीम तुम्हारे लोग इमाम के कदमों में दफन है, इमाम के पहलू में दफन है, चारों तरफ ना अजीम तारीख पूरी है, शेख मुर्तज़ा अंसारी जैसा, अल्लामा हैरी जैसा, सब वहाँ पे माशाल्लाह, एक पूरा एक हौज़े इल्मिया इमाम के कदमों में आबाद है वहाँ पे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। शेख तूसी एक दरवाजे पे जिक्र कर चुका ना, शेख तूसी बैठे एक दरवाजे पे सामने, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती बात, बस अल्लाह रहम करे हालात पे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए आगे बढ़ाए बात। खैर जनाब, यहां से फिर पहुंचे हिल्ला। अब हिल्ला में कौन है? फखरुल मुहक्किकीन हिल्ली, बेटे अल्लामा हिल्ली के। अल्लामा हिल्ली 11 साल की उम्र में मुज्तहिद बने और उनका बेटा 9 साल की उम्र में मुज्तहिद बना। फखरुल मुहक्किकीन नाम है, फखरुल मुहक्किकीन हिल्ली, उनको भी हिल्ली कहा जाता है, अल्लामा हिल्ली वो, और इनको कहा फिर मुझे बना गया फखरुल मुहक्किकीन, बस ये कह दिया जाए तो समझ ले उनके साथ ला दे, उनके शागिर्द।
अब उनकी शागिर्दी में इश्तिहाद में तो पहुंच गया 16-17 साल की, इनको शौक के जितनी फिक्र है सब पढ़ूंगा। तो ये वो नाबिगे दहर था उस जमाने का कि जैसा फिक्र जाफरी पे उबूर था वैसे इसने फिक्र शाफी हम्बली मालिकी हनफी सब पे उबूर हासिल, और इतना उबूर हासिल किया कि दूसरी फिक्रों के लोग मसाइल मालूम करने के लिए इनके पास आते थे। तो ये पूछते थे कि तुम्हारा ताल्लुक किस फिक्र से, वो फिक्र शाफी का होता था तो उसको फिक्र शाफी से जवाब देते थे, हनफी का होता तो फिक्र हनफी से जवाब देते थे, हम्बली का होता तो फिक्र हम्बली से जवाब देते थे, मालिकी का होता तो फिक्र मालिकी से जवाब देते थे, जाफरी का होता था। यानी उस जमाने में उन्होंने साबित किया था जो शक करते थे मौला के इस कौल पे, मौला का फरमान क्या था कि अगर मेरे लिए मसनद अदालत बिछा दी जाती, मसनद दस बिछा दी जाती, तो मैं हर कौम को हर मजहब को उसके हवाले से, अहले इंजील को इंजील से, अहले तौरात को तौरात से, अहले जबूर को जुबैर से जबूर से फैसले देता, दाऊद की तरह फैसले देता। ये सारी अगर मेरे लिए मसनद अदालत बिछा दी जाती तो लोग यकीन नहीं करते थे ना उस जमाने में, ऐसा कैसे हो सकता है किसी के पास आसमान और जमीन का इतना इल्म हो। तो इन्हें ये शौक था, इन्हीं ने ये सारी फिकों का इल्म हासिल करके बताया कि जब एक गुलाम तुम्हें तुम्हारे हर एक के मजहब के मुताबिक जवाब देगा और तुम्हारे उलमा से अच्छा, क्योंकि अपने उलमा को छोड़ के सब आते थे कि नहीं ये सही फतवा बताता है। अब बताइए ऐसा आदमी कहां बर्दाश्त होगा जो फिका तो उसके हिसाब से जवाब दे, और ऐसे जवाब देते थे कि उनको फिथी शाफी समझते थे कि ये शाफी है, हम्बली समझते थे कि ये हम्बली है, मालिकी समझते थे कि ये मालिकी है, हनफी समझते थे कि ये हनफी है, जाफरी को समझते थे कि हमारा। लेकिन इतना था कि शाफी तो बहुत ज्यादा आखिर तक समझते थे कि नहीं इनका मजहब शाफी है, जो उनका अक्सरियत थी ना जवाब आते मसलन बिछी हुई थी मसलन दस जो आता था उससे पूछ। अच्छा उनके बड़े बड़े फुकहा आते थे बेबस, इनके इल्म के आगे बेबस इतना बड़ा इल्म था, अभी बताते दलील दे देंगे ना आपको भी उनके इल्म की मालूम हो जाएगी, आप मालूम हो जाएगा बहुत सारी किताबें तो उनकी बाकी है अभी मौजूद है। अब क्या किया जाए, अब साजिशों के जाल। उस वक्त याद रखिएगा मिस्र और शाम ये पूरे इलाकों का दारुल खिलाफा जो था वो था दमिश्क, दमिश्क कैपिटल। दमिश्क के बारे में जानते ना कि दुनिया का सबसे कदीम कैपिटल है, ये कैपिटल आबादी की बात नहीं कर रहा, आबादी तो मुल्क है मक्का, कैपिटल जो दारुल 400 साल से दमिश्क दारुल हुकूमत है, जो भी हुकूमत रही किसी की भी रही कैपिटल दमिश्क, कदीम तरीन, इसीलिए इसको ना वो आसार कदीमा जो दुनिया का एक महकमा कहलाता है, वो दीवार आप जो गए देखा है ना वो कदीम शहर बिल्कुल महफूज है, कोई छेड़ नहीं सकता उस शहर, क्योंकि ये क्या इंसान की मीरास करार पाया, क्या कहते हैं इसको इंसानी मीरास, ये इंसानी मीरास है, पर जो भी इदारे हैं वो सब उनका वो है कि नहीं इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसको ऐसे रखा जाए क्योंकि दुनिया का कदीम तरीन कैपिटल है, कदीम तरीन दारुल खिलाफा, कदीम तरीन दारुल हुकूमत। इसलिए आपने देखा जदीद दमिश्क अलग है और पुराने दमिश्क जब हम जाते तो है ना अलग, खास इलाका अंदर जाओ तो वैसी गलियां वैसी घर घर और उनको पॉलिश वॉलिश करके रख दिया, वैसे का वैसा बना के सजा के रख दिया है। आज का दौर होता तो पता नहीं क्या हो जाता, कराची में नहीं है खुशकिस्मती है उसकी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ बहुत सारे मसाइल से दमिश्क बदिया, यहाँ होता तो पता नहीं क्या क्या और जमीन से भी निकाल लेते लोग, ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते चीजें। बहरहाल इतना ही काफी है और फिर फेस लग जाएगी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए तो भाई इनको घेरा कहां से जाए, वो जनाब साजिश की गई एक बुरहानुद्दीन मालिकी, मालिकी के उस वक्त के सबसे बड़े आलिम, और एक इबाद इब्ने जमाआ, इबाद इब्ने जमाआ ये शाफी थे, इबाद इब्ने जमाआ शाफी, सब तंग थे। क्या किया जाए, घेरा गया का कि इन पर तशय्यो का इल्ज़ाम लगा दो सबसे आसानी। अभी वो घेर के इनसे पूछेंगे साहबा के बारे में मखसूस, अफजल कौन, ये अफजल के वो अफजल, यही ना मैं आज भी वही है खेल, आ गए साजिश आ गए, मोहब्बत नहीं है किसी से, अली से बुग़्ज़ है, समझ में आ गई, आजमा लेना आजमा लेना। जो लोग अपने हाथों से अपनी मुकद्दस हस्तियों के नाम जानवरों पर लिख दें, जो लोग अपने हाथों से मुकद्दस हस्तियों के नाम दीवारों पर लिख के उनके नाम के साथ बुरा भला लिख दे, सिर्फ इसलिए कि शियों से लड़ने जाएंगे, कि शियों ने ये किया, किया खुद है, कई शहरों में पकड़े गए, अभी सक्कर में भी पकड़े गए, खुद ही क्या। तो अब सोचिए आप कि मोहब्बत उनसे तो नहीं है ना, उनसे मोहब्बत होगी तो उन्हें इस तरह लिखते दीवारों पर, इस तरह जानवरों पर उनके नाम लिखते,
नहीं लिखते ना, तो मोहब्बत उनसे नहीं है,
मोहब्बत दुश्मनी अली से,
बुग्ज अली से है।
तो हमेशा से अली से बुग्ज को कैसे निकाले, ये इल्जाम लगा दो, ये आसान है, या रिफ्ज का इल्जाम लगा दो, राफिजी होने का इल्जाम लगा दो, ये जनाब नुसैरी है, वो भी उसी रखते थे, ये नुसैरी है, क्या ही बोला। खैर जनाब तुम्हारे ये है, ये पूरा तैयार किया गया, तुम्हारे यानी पूरे करारदाद उस पर कहा कि इसकी ड्यूटी लगी इबाद इब्ने जमाआ। अच्छा इसके खास झगड़ा भी था, इबाद इब्ने जमाआत का, इब्ने जमाआत इसका अक्तर नाम है, इब्ने जमाआत इब्ने जमाआत। तो इससे एक दफा बहस हो गई थी किसी बात पे, तो उसने एक बात कही, तो जवाब यही दिया था शहीद अव्वल ने, कहा इब्नुल वाहिद होता तो ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि इब्नुल जमाआत है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए घर जाके सोचिएगा, जिनको समझ में नहीं आया वो घर जाके सोच ले। तो उसको एक वो भी दुश्मनी थी कि इतने भरे दरबार में, भरे उसमें लोग, हजारों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया था, तो भाई तू नहीं तो अपना नाम इब्ने जमाआत रखा, इब्ने वाहिद रखता, इब्ने वाहिद सूट करता है, इब्ने जमाआत तो कहीं भी सूट नहीं करता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब कितने मौलवी सैकड़ों के दस्तखत, तू मार लेते आदमी कहता 350 ने फतवा दे दिया, 400 ने फतवा दे दिया, ऐसे उस हर जमाने में थे, फतवे ले दिए। बादशाह से कहा क्या करूं, बादशाह ने कहा क्या करना है बताओ जल्दी से, कहा सजा मौत की सजा सुना, और क्या मौत की सजा सुना थी। इनको गिरफ्तार करके ले आया गया, गिरफ्तार करके लाया गया, पूरा पढ़ा गया, फर्जियों कहा कि भाई आपको मौत की सजा है। उसने कहा अजीब सजा है मौत की सजा, मुझसे पूछा, मुझसे कोई सवाल किया, मुझे मौका दिया अदालत में, मुझे बात जिसको सजा सुना उसको मौका दो तो बात करने का, नहीं नहीं बादशाह का हुक्म है, बादशाह ने भाई बादशाह ने हुक्म दिया है मुझे बताओ तो सही, सफाई का मौका दो, गवाह तो लाओ जिन्होंने इल्जाम में, उनसे जिरा करो, उनसे बहस करो, आलिम थे कोई मजाक तो नहीं था, इन्हीं ने हर एक से गुफ्तगू की, तुम्हारी फिक्र में ये कायदा है, तुम्हारी फिक्र में ये कायदा है, तुम आओ सुनो ना। इससे कहा इमाम इब्ने जमाआत कहा मैं शाफ़ी हूँ, क्योंकि जानते थे शाफ़ियों का फतवा, कहा मैं शाफ़ी हूँ अब क्या करूँ। अब वो परेशान हो गया कि भाई शाफ़ी है तो वहां तो अगर कोई मुर्तद हो जाए ऐसी बात करें तो किसी सजा मौत नहीं है, एक साल तक उसे कैद में रखा जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अगर उसे साबित लाओ कुछ। तो उसने कहा मेरी तो ये है, अब एक साल इनको कैद में रखा गया बदतरी, उस कैद में भेजे जाते थे, अजय बचने का चांस है ना, कुछ भी करके बच सकते थे, तकैया करके बच सकते थे, दूसरा मजहब इख्तियार करके बच सकते थे, क्योंकि सबके आलिम थे ये, सारे फिकों के आलिम। लेकिन अब इनको मालूम है कि अब अगर मैंने इसे बार्गेनिंग की तो मेरी कौम का मोरल डाउन हो जाएगा। अच्छा इतने बड़े आलिम कि अल्लामा हिल्ली के बाद खुरासान से इनको दावत आई, अब ये जिंदान में सुनिएगा, इनके कवाल सुनिएगा, जिंदान में, जिंदान में रहते हुए नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क बना दिया, कैसे तहरीर बाहर निकलेगी, एक किताब नहीं है, तारीख जिंदान है, तहखाने में जिंदान है, दिन के उजाला से रोशन से रोशनी आती है, कोई कागज नहीं है, कलम नहीं, कुछ नहीं इस शख्स के पास। और फिर कैद में इंसान की नफ्सियाती कैफियत क्या होती है, खुरासान के वाली ने खत लिखा कि भाई यहाँ बड़ा मसला हो रहा है, कोई हिदायत के लिए या तो आप आ जाइए या फौरन पहुंच जाइए, और संभाली उसे नहीं मालूम के कैद में, वो किसी तरह से चोरी छुपे वो खत इन तक पहुंच गया। इन्हीं ने जवाब दिया कि मैं तो नहीं आ सकता कैद में, हाँ मैं किताब लिख के भेज रहा हूं, ये किताब हमेशा के लिए शियों के लिए काफी होगी। अभी बता दो ये किताब आज भी है, आज भी काफी है, हमेशा हमेशा के लिए शियों के लिए काफी होगी, एक किताब 7 दिन में वो किताब लिखी जो कयामत तक जिसे पढ़े बगैर मुज्तहिद होना तो दूर की बात है, आलिम दीन भी नहीं बन सकता। ऐसी किताब लिखी जिस पर इज्तिहाद हो रहा था 150 साल पहले तक, जब तक शेख मुर्तजा अंसारी के रसाइल मकासिब नहीं आ गए, दोनों किताबें अब वो इज्तिहाद की दो किताबें उनको पढ़ना जरूरी है, और हालांकि ये भी पढ़ना लाजिम है, ये दोनों पहले इन दोनों किताबों को पढ़ के इज्तिहाद होता था, पढ़ना इनके नहीं पढ़ गए वो तो आप अभी पढ़ सकते सारे, नहीं इनका पढ़ना। अच्छा बताते उस किताब का तारुफ कराते फिर बताते कितना अर्सा लगता है, 7 दिन में इस शख्स ने वो किताब लिखी ठीकरी से, ठीकरी समझते ना, हाँ बच्चे कह रहे नहीं ये उर्दू की हालत हो गई, नहीं बेटा ऐसा नहीं करो पढ़ो इंग्लिश, तुम्हें नौकरियां करनी है, मुझे मालूम है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन अपनी जबान तो ना छोड़ो, अपनी जबान है। मुझे दुख होता है सातवीं आठवीं के बच्चे से कहते हैं हमें उर्दू लिखनी नहीं आती, हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती। ऐसा नहीं करो बच्चों, ऐसे ये जुल्म ना करो। और बड़ों से भी कह रहा हूं खुदा के लिए घर में पढ़ा दो। अब जब वो हमारे बच्चे अहले जमान के बच्चे जब कमर कमर कर रहे होते हैं ना कमर को, ऐसा लगता है जैसे सीने में कोई बदन खंजर मार रहा है। आप कहना नहीं आता बच्चों को, मुसलसल पढ़ते हैं, शराब पढ़ते हैं, मर्सिया पढ़ते हैं, कमर 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 बनिया हाजिम कमर बनिया क्या हो रहे, टोकने वाला कोई नहीं रहा। काफ तो ठीक कराओ बच्चों के अपने घरों में, काफ अलग होता है, काफ अलग होता है, कैंची 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 के चला जा रहा है। ऐसा लगता है जब कोई शीशा खोल रखकर कारों में डाल रहा है। याद आ जाते हैं अपने एक मारते थे जरा सा कोई लेते देख थप्पड़ मार दे ये ऐसे को, अब है नहीं बच्चा उल्टा खड़ा हो जाएगा दो सुना देगा अब्बा मम्मी सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐसा नहीं करें, ठीकरी पत्थर अलग होता है, पत्थर अलग होता है, ठीकरी क्या होती है वो पतला सा पत्थर, पतला सा पत्थर यूं समझिए कि अगर उसको तोड़ दिया जाए, मटके को अगर तोड़ा जाए तो छोटे छोटे जो बनते हैं ना वो क्या बनते हैं ठीकरियां। इन ठीकरियों से हम लोग खेला करते थे क्या बचपन में, वो किरमिच की बॉल से क्या कहते थे उसको पिट्ठू, पिट्ठू बनाते थे ना ऐसे जरा पता नहीं क्या और भी कोई नाम होता हो तो भूल गया था, 50 साल पुरानी बातें हो गई है ना। तो ठीकरियों से वो बनाते थे, सात ठीकरियां रखते उसको कहते थे ठीकरी बेटा। जैसे कूजा अलग है, सिकोरा अलग है, अखोरा अलग है, इतने सारे नाम है। एक दफा बैठे थे अल्लाह ताली जोरी साहब अल्लाह मकाम हो के घर में, तो वहां ये बहस चढ़ गई। अल्लाह ताली जोरी साहब के बैठने का बाद में आपको जब उनकी नशिस्त होती थी और जिस वक्त वो अपने बिल्कुल जोबन में होते थे तो वहां बैठ के इंसान खाली हाथ नहीं आता था, इतनी चीजें मिलती। नाखिस भी एक दफा बैठा था जब ये बहस चढ़ गई तो उन्होंने इसके नाम पूछने शुरू किए कटोरे, तो कोई दो से ज्यादा बता नहीं सका था। मगर ये नाचिस के घर का माहौल ऐसा था बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह कि वाली साहब ने इतना टोकते सब, तो मैं वाहिद आदमी था जिसने 5 नाम बता दिया। तो कहने भाई आप, मैं मान गया भाई आप हैं, अब मेरे दादा वगैरह का नाम लेकिन बात अपनी तारीफ नहीं करा, तारीफ इन बड़ों की है कि ये बातों बातों में सिखाते थे। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ अपनी नहीं कर रहा, ये ना समझ के मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ये बड़े सिखाते थे, वहां बैठ के हम उठ के आते थे। अब ऐसा माहौल ही मेरा क्या करें कहाँ जाए, ना सीखने वाले रहे ना सिखाने वाले रहे, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ठीकरी बेटा समझ, इसी ठीकरी से क्या करते थे पुराने जमाने में, इसको और बारीक करके कभी कभी इसे लिखते भी थे, कभी जमीन पे लिख रहे हैं कभी पत्थर पत्थर पे कलर पे तो नहीं लिख सकते थे, इस ठीकरी से लिखा जाता था। इस ठीकरी को नोक और बारीक करके पतला करके दीवार पर जाकर कुछ ना, तो इन्हीं ने उस ठीकरी से 7 दिन में किताब लिखी। लोग आतो दमिश्किया ला मीम ऐन और वो हा जिसको कहते हैं ताए तानिश भी कहते हैं, लोग आतो दमिश्किया लुमा लुमा जिसके माने चमक रोशनी, एकदम से बिजली चमकती है ना वो जो रोशनी आती है बर्क, और भी बहुत सारे माने लेकिन यहां पे इसके बने लुमा बर्क चमक इसको कहते हैं लुमा। ये लुमा किताब लिखी, ठीकरी से लिखी और जिन पत्थरों पे लिखी टुकड़ों पे लिखी छाल पे लिखी, कहीं कभी कोई कागज मिल गया किसी से दरबार से कहा दरोगा एक कागज ला दे मुझे, ओ ले जा ला दिया किसी ने कागज, किताब 7 दिन में वो किताब लिखी जिसे पढ़ने में कम से कम 2.5 साल लगते। इसलिए इन फोका आकर जिक्र कर रहा हूं उलमा को गालियां देने वाला मराठे को बुरा वाला कहने वाला कहा जिंदान में उनको ये ख्याल है कि शिया ऐसे ना रह जाए बगैर हिदायत के ना रह जाए कोई शिया दुनिया का। और अल्लाह ने कैसी बरकत दी उसके कलम में कि 7 दिन में लिखी हुई किताब कयामत तक के लिए मशाल राह। मैंने क्या कहा पढ़ने में कम से कम 2.5 साल वरना 4-4 साल लोग लगाते हैं लुमा पढ़ने में, किताब तारा से लेके वो किताब उस सैद शिकार की किताब तक सारी किताबें उसमें चंद जुमलों में लिखते जाते थे। और शहीद सानी कौन जिसने शरह लुमा लिखी उसी किताब की शरह लिखी लुमा की शरह शहीद मौलवी बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये वो शख्स के 7 दिन में ऐसी किताब लिख के जा रहा है जो कयामत तक के लिए हिदायत ही हिदायत। ہدایت ہی ہدایت, ہدایت ہی ہدایت, جس کی شرح ایک نہیں ہے شرح لما درجنوں, بلکہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ شرح ہو گئی, کیونکہ میرے پاس جو شرح النزید ہے اس کی 17 جلدیں اس کے علاوہ الگ ہیں, 20 جلدوں میں آ گئی, وہ بھی ہے میرے پاس لما دمشقیا, جو 20 جلد, 2-3 شرح تو میں نے کرا گیا ہوں اور نہیں میں لگے اس شرح اس کی لما کی, تو اتنا کام کر کے جا رہے ہیں وہ آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے, ذرا سی بارگیننگ کر کے ایک سال. اب شہید اول کیوں؟ کیونکہ موقع تھا جان بچانے کا, اختیاری شہادت ہے, اختیاری, بے اختیاری نہیں ہے, اچانک نہیں, اچانک کسی نے مارا نہیں ہے, موقع ہے ایک سال کا موقع, نہیں جھکے. کہا کہ شافعی مطلب کہا سب توبہ کر لو, کہا کس بات کی توبہ, جب کوئی جرم نہیں کیا تو توبہ کس بات کی کرو, کیونکہ جانتے تھے کہ توبہ کر لی تو یہ کہیں گے کہ اگر مجرم نہیں تھا تو توبہ کیوں کی, جانتے تھے کہ اعتراف جرم نہیں کرنا. لہذا ایک سال کے بعد, اب سنیے ان کو دو طریقے بتاتا ہوں جو روایتوں میں ہے, انجام کامن ہے وہ ایک ہی ہوا, لیکن دو روایت, ایک میں شہید اول کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا, ایک پیر ایک اونٹ سے, اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا. کیا ہوا ہوگا آشر, دو حصوں میں جسم, اور پوری طرح سے برابر سے, تھوڑی تلوار سے کاٹا تو نہیں ہے نا, کھینچا گیا. جب کھینچا گیا تو دھڑ کہیں, سر کہیں, پیٹ کہیں, سینہ کہیں, ایسے مارا گیا. بس نہیں کی, مارنے کے بعد انتقام, جیسے کربلا نہیں دیتے, اب انتقام, انتقام, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. پھر بسنے کی, جلا دیا گیا تاکہ نہ کہیں قبر ہو نہ کہیں مزار, ورنہ قبر ہوگی مزار ہوگی تو شیعہ ڈھونڈ کے پہنچ جائیں گے. دمشق کے زندان میں یہ ہے, اس لیے شہید اول اختیاری شہادت دی, راستہ تھا بچنے کا, درجنوں راستے تھے نہیں. کیوں؟ میری قوم کہے گی کہ ہمارا عالم ڈر گیا. ہر ایک کے مرتبے سوا سوا ہے نا, الگ الگ ہے, الگ. عام آدمی کے لیے جو چیز بالکل جائز ہے, شہید اول جیسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو رہنما ہے نا, رہنما, اسے کہتے ہیں رہنما. یہ چور ڈکیت رہنما نہیں ہوتے, یہ سمگلر رہنما نہیں ہوتے, یہ منی لانڈرنگ کرنے والے رہنما نہیں ہوتے, یہ ہوتے رہنما. اس لیے کہہ رہے ہیں شہید اول, شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی, شہید اول 8ویں صدی ہجری کا وہ شہید جس نے تاریخ رقم کی. کتابیں بہت نام بتا دیں گے, لیکن لما 7 دن میں زندان میں جا کوئی کتاب, دوسری کتاب بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا اس کا دماغ, کتاب ہوگا اس کا حافظہ, اور ایسی کتاب, عام کتاب نہیں, مضمون جیسے میں لکھ دیتا ہوں, نہیں, ایک ایسی کتاب جو قیامت تک مشعل رہا, کہیں بھی حوض علم اور تشیع کا یہ لما ضرور پڑھائی جائے گی. لما کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. عام معلم بننے کے لیے بھی لما پڑھنا لازمی ہے. لما پڑھ کے بھی نہ آئے تو پھر سمجھ لو پرائمری پاس ہے. ہاں ہاں, کیٹیگریز ہے نا, پرائمری پاس, مڈل پاس, انٹر پاس. آپ سب کے سے ایک توقع رکھتے, ایک توقع کیوں رکھتے ہو؟ سب سے پہلے اس کی کیپیسٹی دیکھو نا. میں جب گاؤں دیہاتوں میں انٹیریئر میں جاتا ہوں, ان کو بھی دعائیں دیتا ہوں, یقین مانی, اگر وہ مولوی نہ ہو بےچارے تو وہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں, نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے ہی نہیں, کوئی عید پڑھانے والا کوئی نہیں, بقرعید پڑھانے والا کوئی. تو ہر ایک کی ضرورت ہے نا معاشرے میں, چاہے وہ پرائمری پاس ہو, چاہے وہ انٹر پاس ہو, چاہے وہ میٹرک پاس. ہاں, پھر اس سے آگے بڑھ کے لمتین کہلاتی ہیں دونوں جلدیں نا, لما تو ملا کے کہتے ہیں لمتین. جب لمتین ختم کر لیں دونوں جلدیں, تو پھر اس قابل ہو رہا ہے کہ ایک معاشرے میں جا کے اس کے مسائل کا جواب دے سکے. اس سے پہلے آ جائے گا تو ہمارے یہاں سے بہت سارے پڑھیں, میں بھی ملا ہوں ان سے, اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے, آپ کے مسئلے کہاں سے حل کریں گے؟ وہ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, ختم کر دیا. آپ کی خاموشی سے میں تنگ نہیں آتا, لیکن جب آپ آہستہ سے صلوات بھیجتے ہیں, جب مجھے بڑا ڈر لگنے لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا, اتنی آہستہ صلوات کیوں بھیجیے؟ بلند آواز پر بس منزل پر آ گیا. یہ ہیں فقہائے اہل بیت, یہ ہیں علماء اہل بیت, ہر صدی میں اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں تاریخ ہماری. سرخ تشیع, اس کو کہتے ہیں سرخ تشیع, خانقاہوں کا تشیع نہیں ہے یہ,
درباریوں کا تشیع نہیں ہے، یہ یہ ہے انقلابیوں کا تشیع، یہ ہے سرخ تشیع، جو کسی بھی دور میں کسی سامراجی طاقت کے سامنے نہیں جھکا، نہ جھکے گا۔ جہاں بھی سرخ تشیع ہے دیکھ لو، کھڑا ہوا ہے نا، استعمار کے مقابلے میں کھڑے، ڈٹے ہوئے نا، لڑ رہے ہیں نا، ہمیشہ ایسے رہنا، اپنی فکروں کو وہاں پہ لے جاؤ، اس سطح پہ لے جاؤ۔ ورنہ تو دنیا میں بڑے بڑے جگہ، بڑے بڑے ملک میں جانتا ہوں وہاں کے مولویوں کا حال کیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ ایک جگہ، ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں ایک جگہ گیا تو 50-60 مولوی جمع ہو گئے، اور شروع آپ کیا یہ ہوتا ہے، آپ کیا وہ ہوتا ہے، آپ کیا وہ ہوتا ہے، اب میں سن رہا پیٹرول فون میں کیا کہوں، سنتا رہا۔ جب حد سے بات آگے بڑھ گئی تو میں نے کہا دعا کرو کبھی تمہیں ان دشمنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنی باتیں کر رہے ہوں نا، اس لیے باتیں کر رہے ہو، کبھی تم نے کچھ دیکھا نہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ دیکھا الحمدللہ، اور مقابلہ کیا، پیٹ نہیں دکھائی الحمدللہ، نہ ہم نے کوئی جلوس کم ہونے دیا، نہ کوئی مجلس کم ہونے دیا۔ بے شک ہزاروں شہید اٹھے، کیوں؟ ہماری تاریخ ہے، ہم سرخ تشیع کے وارث ہیں، ہم سامراج کے مقابلے میں ڈٹنے والے لوگ ہیں، بیٹھنے والے لوگ نہیں، ہم ظالم حکمرانوں کے کاسا لیس نہیں، ہم مسلمانوں کے قاتلوں کے کاسا لیس نہیں، ہم مظلوموں پر ظلم کرنے والے حکمرانوں اور جماعتوں کے کاسا لیس نہیں۔ ہم نے ہر دور میں، ہر زمانے میں سرخ تشیع کا پرچم بلند کیا ہے، انقلابی تشیع کا پرچم بلند کیا ہے، یاد رکھنا، جھکے نہیں، نہ جھکیں گے۔ ہم اس فقیہ کو جانتے ہیں جو حبیب ابن مظاہر کی سنت پہ چلتا ہے، ہم اور کسی کو نہیں جانتے۔ ہمارے لیے فقیہ کا معیار یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کربلا میں ایک حبیب ابن مظاہر تھوڑی، حسین کے ساتھ جتنے تھے سب عالم تھے، نہیں تھے؟ اگر شیر خار تھا نا وہ بھی عالم تھا۔ حبیب ابن مظاہر تو فقیہ ہے، حسین نے فقیہ کہا، عباس تو اس سے بڑا فقیہ ہے نا، اور ثانیہ زہرا اس کا تو لقب ہی عالم غیر معلمہ ہے، لیکن 4 سال کی بچی کا علم ہوتا ہو، کتنی بڑی عالمہ ہے وہ 4 سال کی بچی۔ سنیں چند جملے مصائب کے سماعت فرمائیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ کس بچی کا ذکر کر رہا ہوں۔ حسین زلجنا پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں میدان پہ، زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایسی ہے نا، جب حسین نے دیکھا نظر جھکا کے تو 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی زلجنا، بابا کے زلجنا میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جا، جو تجھ پہ سوار ہو کے گیا واپس نہیں آیا۔ حسین اتر آئے، بچی کو گود میں اٹھا لی، پیار کی، میری بچی۔ جب کربلا کا علم دیا گیا نا مجھے، جب ہمیں کربلا کا علم دیا گیا تو دعا کی تھی، معبود سارے امتحانات بھی سامنے آئے تھے تو ایک دعا مانگتی، معبود ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں۔ سکینہ تو وہ بیٹی ہے، تو وہ بیٹی جو میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا قرار ہے۔ سکینہ سکینہ میں، تو میرا وہ امتحان ہے جو میں نے مانگا، سمجھ میں آ گئی بات؟ سارے امتحان تھے اور ایک امتحان وہ تھا جو حسین نے خود مانگا تھا، یہ سکینہ وہ امتحان۔ میری بچی جانا تو پڑے گا مجھے، اور تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور اب تو بھی عادت ڈال لے بغیر بابا کے سینے پر سونے، بابا کے سینے کے بغیر سونے کی عادت ڈال لے، اب تجھے یہ سینہ نہیں ملے گا، سمجھایا۔ اب بچی ایک بات اور کہتی ہے، بابا اچھا اگر جا رہے ہیں تو میری پیاس کا تو کچھ بندوبست کر دے، بس عزادار ہو۔ روایات میں تو اور بھی جملے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حسین نے اتنا کہا ہوگا، میری بچی علی اصغر پیاسا ہے، سب پیاسے، پانی تو مل جائے گا، ظاہر ہے کہ اسماعیل ایڑیاں رگڑے، زمزم جاری ہو جائے تو حسین کون ہے،
تمام انبیاء کا وارث ہے نا, اب شک نہ کرو کہ اگر حسین ٹھوکر مار دے اور چشمہ جاری ہو جائے, شک کی کون سی بات, ولایت تکوینی رکھتا ہے نا, پورا اختیار رکھتا ہے نا حسین, جاری کر دیا چشمہ, میری بچی پانی تو یہ رہا. لیکن خیر پینے سے پہلے ایک بات سن لے, کہ سوچ لے علی اصغر بھی پیاسا ہے, سب پیاسا ہے, پانی تو تو پی لے گی, مگر قیامت تک بات رہ جائے گی کہ حسین کے بچوں میں ایک بچی تھی جو پیاس برداشت نہ کر سکے. میں نے کیا کہا تھا پہلے جملہ, اب بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی عالمہ ہے سکینہ, 4 سال کی بچی, جو ہی بابا کی یہ بات سنی پیچھے ہٹ گئی, چہرے سے پیاس کے تاثرات بھی غائب اور پیاس کی تکلیف بھی غائب. یہی بچی جو بھی سارا دن کبھی عباس سے پانی مانگتی رہی, کبھی علی اکبر, یہی بچی جو ابھی چند لمحے پہلے بابا سے کہہ رہی ہے بابا پانی کا بندوبست کر دو, وہ بچی پیچھے ہٹ کے سکون سے کہتی ہے بابا جاؤ جاؤ. اب سکینہ کسی سے پانی نہیں. سنیے سنیے, کہیں میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی کہ اس کے بعد سکینہ نے کبھی پانی مانگا, آیا اپنی جگہ مانگا کسی سے نہیں پانی. سود دے دو پہلے 2-4 جملے, میں نے کہا نا سن لیجیے آج اس معصومہ کی شان میں, جب شام غریبہ میں زوج حور فاقہ شکنی کا سامان لے کر آئی تو ثانیہ زہرا نے سب سے پہلے سکینہ کا شانہ پکڑ کے ہلایا, میری بچی اٹھ دیکھ پانی آیا ہے. بچی نے گھبرا کے کہا تھا میرا چچا آ گیا, نہیں میری بچی تیرا چچا نہیں آیا, یہ زوج حور فاقہ شکنی کا سامان لے. اچھا پھوپھی اما کیا سب نے پانی پی لیا؟ نہیں میری بچی کسی نے نہیں پیا. کیوں؟ میری بچی تو سب سے چھوٹی ہے نا, پہلے تو پی لے. بس حسین کی اس لاڈلی سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا, دوڑی تھی مقتل کی. جب پوچھا تھا پھوپھی نے میری بچی سکینہ کہاں جاتی, کہا آپ نے کہا نا سب سے چھوٹے کا پہلا حق ہے, میرا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا. سنو اس کی مصیبت, 2 جملے اور سن لو بس, مصیبت تو کوئی نہیں بیان کر سکتا آل رسول کی, سکینہ کی مصیبت کہاں سے کون بیان کرے گا, لیکن 2 جملے سن لو. آپ نے سنا ہے نا کہ شام کی راہوں میں سکینہ گر گئی تھی, کیوں گری تھی وہ سن لیجئے مجھ سے, کیوں گری تھی؟ جب کربلا میں اسیروں کو سوار کرایا جا رہا تھا نا ناکوں پر, تو ناکے بے پالانوں کے تھے, پالان نہیں بچھے تھے ان پر, تو جو بڑے تھے وہ کوہان کا سہارا لے دیتے تھے نا, بیٹھ جاتے, بچے کیسے بیٹھے. جب بچوں کو سوار کیا جاتا تھا راہوں میں یہ بچے گر جاتے تھے, اسی لیے دیکھا نا کتنے بچوں کی قبریں ہیں, 2 کی تو بال بال میں لے کر آئے, پھر وہ ہلا کے پاس ہے شریفہ بی بی کی, کتنے ہیں, کتنے بچوں کی عورتوں کی قبریں, سب بکھرے ہوئے راہوں میں گر جاتے تھے اونٹ سے, شہید ہو جاتے. بس عزیزو سکینہ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا, جب کربلا میں اس بچی کو سوار کرایا جاتا تھا گر جاتی تھی نیچے, پھر سوار کراتے تھے پھر گر جاتی تھی نیچے. تو اب نفس المحموم کی روایت سے سہارا لے کے آپ کو بیان کر رہا ہوں, ان ملونوں نے کیا کیا تھا, پھر بھی وہ الفاظ نہیں پڑھا جو لکھے میں, وہ الفاظ نہیں پڑھا میں پورے, میری ہمت نہیں ہے. ان ملونوں نے کیا کیا, ناپے کے گرد بچی کو رسی سے باندھا, جزاکم رب. ان ملونوں نے حسین کی لاڈلی کو, حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو ناکے کی گرد رسی سے باندھا. پہلے کربلا سے کوفے لے کے, جب کوفے سے شام, تو پھر یہی سلوک. بتائیے اتنی سی بچی کس اذیت میں صبر کر رہی تھی, یہ سبب تھا کہ جب راستے میں رسیاں ڈھیلی ہوئی تھی یہ بچی ناکے سے گر گئی. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب. جزاكم الله.